अगर हो सके तो चंद मिनट मुझे अपने दोस्त को तन्हा छोड़ो।
ठीक है।
शुक्रिया। आइए नाज़िम, तुम रहो। देखो मेरे दोस्त, नाज़रीन जानती है कि मैं बहुत सख्त उसूलों की पाबंद हूँ, यानी मैं इतनी आसान से किसी को रास्ता नहीं बताती। इसलिए कि तुम्हारी पढ़ाई का रिकॉर्ड अच्छा है, चाहती हूँ कि एक मशवरा तुमको दूँ, लेकिन ये वादा करो कि ये बात तुम्हारे दोस्त को पता न चले, ठीक?
जरूर।
मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दोस्त यहाँ रुके, इसलिए कि अभी हालत उसके लिए फराहम नहीं है। तुम्हारे लिए दुनिया की बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मुमकिन है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी, मैं वादा करती हूँ। लेकिन हमारे दरमियान कुछ समझौते हैं, उन पर दस्तखत करना पड़ेंगे और इस सिलसिले में कोई पैसा नहीं लूंगी।
अच्छा, लेकिन क्यों?
मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ, लेकिन ईरानी नौजवानों के तई मेरी कुछ अखलाकी जिम्मेदारियां हैं। मानो या ना मानो, मैं भी ईरानी हूँ। जिस वक्त देखती हूँ कि ईरानी नौजवान इस तरह बर्बाद हो रहे हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और उनसे पैसा लेती हूँ। तुम्हारे लिए फ्री काम करूंगी और कोई एहसान भी नहीं जताऊंगी।
नीना साहिबा गफला वगैरह नहीं करती हैं, ये बिल्कुल आइडियल हालात हैं।
हालात के आइडियल होने में कोई शक नहीं है, लेकिन अफसोस के मैं मुश्किल में हूं।
जो भी बात हो बताओ, मैं मदद करूंगी।
कैसे कहूं, ये कि मेरे वालिद के ऊपर जो मुश्किल आ गई है उसकी वजह से घर का खर्चा मेरे सर है। मैं एक कंपनी में पार्ट टाइम काम करता हूं। अगर उसके मालिक को पता चल गया कि मुझे बाहर निकाल दिया गया है तो वो भी मुझे बाहर निकाल देंगे। लेकिन दूसरी तरफ से आपकी पेशकश भी बहुत अच्छी है।
अभी तुम्हारी महीने में क्या तनख्वाह है?
तकरीबन 4 लाख तुमान, कुछ ज्यादा कुछ कम।
यानी तकरीबन 300 यूरो। अच्छा, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं ऐसा काम करूंगी कि 1000 यूरो माहाना आमदनी हो, 400 अपने खर्च के लिए और 600 अपने घर वालों के लिए भेजना, ठीक है?
ये कैसे मुमकिन है?
तुम इस काम से काम ना रखो, यूनिवर्सिटी में दाखिला कराना मेरा काम है और तुम्हारे लिए काम ढूंढना भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरे काम के लिए तुमसे पैसा लूंगी।
लेकिन
हाँ,
मेरे पास पैसा नहीं है।
अभी नहीं, उधर जाने के बाद हालात अच्छे हो जाएंगे, उस समय मेरे लिए $500 भेज देना। देखो, जो तुम्हारे अंदर जो जहानत और सलाहियत है, मेरे ख्याल में उससे चंद महीनों के अंदर तुम्हारी तनख्वाह 10 से 15 हज़ार तक हो जाएगी। बस अपने दोस्त से सिलसिले में कुछ ना कहना,
मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
ठीक है? सोचने के लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। हमें वहां की यूनिवर्सिटियां खुलने से पहले तुम्हारे कागजात को तैयार करना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारी मार्कशीट को भी हम वहां भेज देंगे ताकि तुम वहां अपनी मुश्किलात के बावजूद पढ़ाई भी कर सको।
यानी 1 साल से कम वक्त में फारिग तहसील हो जाओगे और 2 साल में तुम एमए भी कर लोगे, वो भी एंट्रेंस टेस्ट के बगैर। यूनिवर्सिटी खुद ही तुमको पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप दे देगी, तुम्हारी पढ़ाई और जिंदगी का खर्चा देगी। और अब क्या मुश्किल है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी इस माहदे पर दस्तखत करती और जाकर बैठ जाती। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोई उम्मीद नहीं रखते हो। पढ़ाई जारी रखने की बात तो अलग है, आप मामूली इंटर पास बनकर रहना चाहते हैं क्या?
यकीनन नहीं।
मेरी मदद पे यकीन रखो फरीद।
ठीक है, मैं आपका नाम भूल गया।
नीना बुला सकते हो।
नीना साहिबा, शुक्रिया। ठीक है, अब इजाजत दीजिए।
बहुत खुशी हुई।
आपकी रहनुमाई का शुक्रिया।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
जानती हो ना इस वक्त क्या करना चाहिए?
नहीं,
फरीद के निकलने की खबर उसी कंपनी के मालिक तक पहुंचनी चाहिए।
मजाक कर रही हो?
तुम्हें ऐसा लग रहा है?
लेकिन आखिर कैसे?
उसका एड्रेस है, उसका पीछा करके कंपनी तक पहुंच सकती हो। उसके बाद उनको एक लेटर दे देना। मैं उससे कंपनी का एड्रेस भी मालूम कर सकती थी, लेकिन मैंने यही नहीं किया कि शक ना हो। और लेटर बेहतर है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट हो। यूनिवर्सिटी का लेटर पैड और स्टैम्प जिसकी भी जरूरत हो बनवा लेना।
वो कैसे?
उफ, इतनी बेवकूफ ना बनो नाजनीन, ये तमाम चीजें 2-3 लाख में हो जाएंगी।
लेकिन आखिर मैं,
लेकिन वेकिन मत करो, मुझे इस लड़के की जरूरत है। ये मेरे लिए पैसे भी लाएगा और साग भी, और वो यहाँ रुक कर करेगा अभी क्या? थोड़ा उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचो, फिक्र होने की जरूरत नहीं है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले करती हूँ, जितना ज्यादा दबाव डालोगी उतनी जल्दी भागेगा।
क्या कह रही थी वो?
कुछ उल्टी सीधी बातें कि तुम्हारा खारजा क्यों हो गया और इस तरह की बातें। उससे ये बातें नहीं बताना चाहिए थी।
अब इतने फिक्रमंद क्यों?
इसलिए फिक्रमंद हूँ कि मेरे जहन में ये वसवसा तुमने डाला है, वो भी इतने काम के बावजूद। मैं नहीं जानता अब रेहाना से क्या कहूँ।
तो रेहाना क्या चाहती है इस मसले में?
मेरी और उसकी मंगनी हो चुकी है, पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी होने वाली है, यकबैक छोड़कर बाहर चला जाऊं क्या कहूं उससे?
बहरहाल मौका बहुत अच्छा है, अलबत्ता अगर जाया ना करो।
मैं जरा कंपनी जा रहा हूं, दो तीन दिन से गया नहीं हूं, वहां से भी बाहर निकाल दिया जाऊंगा। तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो?
नहीं भाई, यूनिवर्सिटी क्यों जाऊंगा, घर जा रहा हूं, आज शाम को बहुत काम है।
ठीक है, खुदा हाफिज।
फरीद,
क्या है
ये रेहाना की भी पोजीशन यूनिवर्सिटी में बुरी नहीं है? बोलो तो उसके और हमीद के लिए भी नाजनीन से बात करूं।
तुम क्यों इतना उस लड़की से दिलचस्पी दिखा रहे हो, कोई बात है?
बात कैसी बात, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं, मैंने फकत ये कहा है कि ये लोग अपने फन में मौला हैं, बस। पता है मैं सोच रहा था कि काश हम सब चलते तो कितना अच्छा होता, मैं, तुम, हमीद, निगार, रेहाना। इस तरह से हमारी दोस्ती का हल्का भी न टूटता।
काश लैला जिंदा होती, लेकिन अगर होती तो इस वक्त हम सब क्लास में बैठे होते। कैसी मुसीबत हम पर आ पड़ी। शाहीन, तुम तो इतने दिल नाजुक नहीं थे। देखो मैं माफी चाहता हूं, मेरी गलती है, सब याद नहीं दिलाना चाहिए था। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, छोड़ो यार।
कोई बात नहीं, छोड़ो। तो फिर तुम हमीद से बात कर लो।
हाँ, अगर वो भी आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जानते हो उसके हालात हमसे मुख्तलिफ हैं। वो तो अपनी पढ़ाई कर ही रहा है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम तो ठीक हो ना?
हाँ, परेशान ना हो।
तो ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। हेलो, सलाम अलैकुम। कैसी हैं मिस नाजनीन? शाहीन हूँ। शुक्रिया, आप कैसी हैं? मिस नाजनीन, एक बात थी, हो सकता है मैं दो तीन तलबा को और अपने साथ ले आ सकूँ, ठीक है? बस मेहरबानी करके मेरा ख्याल ज़्यादा रखिएगा। आपका करम है, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आ सकता हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा, तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।
दिल शकीब साहिबा, आपने कहा कि लैला की मौत से पहले आप उसके पास थीं, ठीक है?
जी हाँ।
तो फिर आपने कैसे नहीं देखा कि उसको किसने मारा?
इसलिए कि वहां एकदम से भीड़ हो गई थी और लैला मुझसे अलग हो गई, फिर मैंने उसे नहीं देखा, बस उसके चीखने की आवाज आई।
उन लोगों में से जो उस वक्त वहां पर थे, आपको किसी का नाम याद है? जैसे शाहीन फरशीदी या मोहम्मद अली, के इसका सरनेम भूल गया हूँ, वही गैर मुल्की लड़का, ये लोग वहाँ पे थे?
नहीं तो उनमें से कोई नहीं था वहाँ।
बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जो आपने अपना वक्त मुझे दिया।
अब मैं जा सकती हूँ?
बिल्कुल, एक बार फिर शुक्रिया आपका।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
फरा मर्जी साहिबा
जी,
डॉक्टर आ गए?
नहीं, उनकी मीटिंग तुलानी हो गई, अभी तक नहीं आए।
मेरे लिए चाय और पेस्ट्री मंगवाओ, और तुम खुद भी 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आना, जरा काम है।
जी जरूर।
कोई और बात?
हामिद मुरादी कई बार आ चुका है, कुछ वसाइल और सामान की दरखास्त की है, वो जाता है तो बीवी आती है, एक जाता है तो दूसरा आता है, क्या करे डॉक्टर?
छोड़ो, ان کی درخواست کو فائل میں رکھ دو. ان سے کہنا کہ تحقیقاتی کام کی وجہ سے غیر حاضری نہ کریں بلکہ کلاس اٹینڈ کریں. آؤ تم سے کام ہے.
کیوں ایسے مجھے دیکھ رہی ہو؟
پاگل ہو گئے ہو؟
کیا کروں مزدوری شروع کر دوں؟
ہاں شرافت کے لیے وہی صحیح ہے.
ارے جاؤ بھائی تم سب کے سب گریجویٹ ہو رہے ہو اور میرا اتنا پڑھنے کے باوجود خارجہ ہو رہا ہے.
غلطی تمہارے مہربان دوست شاہین میاں کی ہے. اب تو تمہارے لیے باہر ایک یونیورسٹی بھی ڈھونڈ لی ہے.
کم سے کم کسی کی تو توجہ ہماری طرف ہے. وہ سلیمانی تو آتے جاتے کہتے ہیں اپنی یہ کرو وہ نہ کرو یہاں.
کیا بکواس کر رہے ہو
ریحانہ؟ آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو.
میں نہیں آؤں گی. میرے بابا دنیا کے بہترین دل کے ڈاکٹر ہیں. یہی میرے لیے کافی ہے. دادا کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا کیونکہ دیر میں پہنچے. وہ پڑھائی جو انہوں نے کی تھی بس وہی ان کے کام آئی.
ریحانہ ذرا
حمید آہستہ. حمید ٹھیک سے چلاؤ. لائسنس بھی نہیں ہے کچھ نہ کر بیٹھو.
اب ایک لائسنس ہی تو ہے تمہارے پاس بس وہی سناتی رہو. یہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟
کس چیز کا؟
باہر جانے کے لیے فرید کے مشورے کی بات کر رہا ہوں. ویسے برا نہیں ہے اگر ساتھ میں چلے.
یعنی تم واقعی اس بارے میں سوچ رہے ہو؟
ہاں سوچنے کی تو بات ہے.
مجھے تو کوئی وسوسہ نہیں ہوا. میں نے تو اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں. ٹھیک سے چلاؤ نا تم.
60 سے اوپر سے نہیں چلا رہا ہوں. ویسے میں کہتا ہوں کل چلو چلتے ہیں ساتھ میں دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں.
حمید صاحب ہم کیا پاگل ہیں جو بے وجہ ان کے پاس جائیں گے؟ یورپ کے لوگ تو خود ہی بھوکے اور بے روزگار ہیں. آخر وہ کیوں ہم کو پیسہ دیں گے کہ ہم پڑھائی کریں اور اسکالرشپ لیں؟
ارے اس عورت نے وہ فرید سے کہا ہے.
بڑے بدتمیز ہو. عورت نہیں میڈم.
ٹھیک ہے میڈم کم از کم تم تو غلط خبر نہ دو. یورپ کے لوگ کہاں بھوکے ہیں؟
میڈم کا تو دماغ خراب ہے اور میری خبر بالکل سچ ہے. تمہاری انگلش تو خود ہی اچھی ہے تو جا کے نیٹ پہ دیکھ لو نا وہاں پہ کیا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. میں نے بھی دیکھ لیا.
اچھا تو میڈم باہر کی پڑھائی کے بارے میں بھی کافی معلومات رکھتی ہیں.
مجھے چھان بین کی عادت جو ہے. میری دوست مترا یاد ہے جو آسٹریلیا چلی گئی تھی؟
ہاں تم نے کہا تھا وہاں خوش ہے. اتنی بیوقوفی کے باوجود ایم بی بی ایس کر رہی ہے.
جی ہاں خوش ہے اس لیے کہ اس نے وہاں شادی کر لی اور اس کے شوہر کی کباب کی دکان ہے. اچھے حالات ہیں. میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی وہاں کباب کی دکان کھولو اور میں ایم ڈی پڑھوں.
ٹھیک ہے بھائی نہیں جائیں گے. کیوں اتنا مذاق اڑا رہی ہو؟
اچھا تم نے یہ بات سوچی ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو تمہاری ماں کا کیا ہوگا؟ دیکھا تم ایرانی لڑکے بھی عجیب ہوتے ہو. جس کنڈیشن میں بھی ہو اگر ماں کا نام آتا ہے تو فوراً بریک لگا دیتے ہو.
ارے کیا کہہ رہی ہو تم نے بائک نہیں دیکھی؟ اگر یہی بات ہے تو پھر اپنی امی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا.
ٹھیک ہے تب تو صرف ایک ہی مشکل بچے گی. وہ یہ کہ تمہاری ماں ہر شب جمعہ کو تمہارے باپ کے قبر پر فاتحہ پڑھنے ایران آئیں گے اور پھر جمعہ صبح کو واپس.
نگار جب تم مذاق کے موڈ میں آ جاتی ہو تو پھر کوئی تم سے سنجیدہ بات نہیں ہو سکتی.
کیونکہ شوہر صاحب آپ کی بات ہی سنجیدہ نہیں ہے. چلو اترو تمہارے بس کی بات نہیں.
تم ٹھیک ہو.
اچھا تو ایسا تھا تم اوپر والی منزل پر نہیں تھی. تو یہ بتاؤ تم حادثے کے وقت کہاں پر تھی؟
میں کیمپس میں تھی لیلا کے پاس. نہیں جانتی کیا ہوا اچانک لیلا کیمپس کی دوسرے طرف چلی گئی اور میں اور دوسرے طلبہ نعرہ لگا رہے تھے. اچانک اس طرف ہنگامہ ہو گیا.
جن دوستوں کو تم جانتی ہو اس وقت ان میں سے کون وہاں پر تھا؟
پتہ نہیں یعنی مجھے یاد نہیں آ رہا. میں اس کے بعد شاہین کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی.
شاہین کون؟
شاہین میرا کلاس میٹ ہے. وہ خود بہت غمگین اور پریشان تھا. ایک آدمی جو وہاں ہاسپٹل میں چاہیے تھا جو اس کو سنبھالے. بہت برا منظر تھا کبھی نہیں بھول سکتی.
یہ بتاؤ شاہین فرشیدی بھی اس وقت کیمپس میں تھا؟
جی میرا خیال ہے وہ وہاں تھا.
دیکھو تمہارا شاید اور میرا خیال ہے میرے کام نہیں آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ خوب سوچ سمجھ کر بولو اور اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ کہاں اس کو دیکھا تھا. میں انتظار کر رہا ہوں.
मैं क्या कहूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है और मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आप असली मुजरिम को ढूंढने के बजाय हमारे पीछे क्यों आए हैं यहाँ पे।
मैडम बेगी, यहाँ पर मैं सवाल कर रहा हूँ और मुझे अपना काम अच्छे तरीके से आता है। मैं चाहता हूँ कि तवज्जो से सोचो और बगैर किसी शक और गुमान और तर्दीद के मेरे सवाल का जवाब दो। अलबत्ता अगर ये चाहती हो कि लैला और उसके घर वाले तुमसे राजी रहें और तुम उनकी मदद करो तो, चाहती हो ना?
जी माफ कीजिएगा।
ठीक है, अब एक कागज उठाओ और जो कुछ भी याद आ रहा है उस कागज पर लिखो। जो भी उस वक्त तुम्हारे करीब थे उनका नाम लिख दो।
शायद बातचीत गलत लिख दूं, इसलिए कि उस दिन बहुत भीड़ थी, मुझे याद नहीं आ रहा है।
देखो तुम लिखो, मैं जानता हूं कि वहां क्या हुआ था। तुम्हें जो भी याद आ रहा है वो लिखो।
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और मुश्किल में पड़ जाए।
मुझे मालूम है, मैं तुम्हारी बातों को सनद नहीं बनाऊंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि सोच समझ कर जो भी याद आ रहा है उसको कागज पर लिख दो, पूरी तफसील के साथ।
ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई मुश्किल तो नहीं है?
कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है।
ऐसा हो सकता है कि मैं लिखकर बाद में ला दूं, अभी मेरी क्लास है।
तुम्हारी क्लास की जिम्मेदारी मेरी। जो चीजें मैंने कही हैं उन्हें लिखो, ये मेरे लिए बहुत अहम है।
मसूद में अल्लाह की रहमत हो आप पर, बुरे फंसे हो।
मैं जाबरी से ज्यादा खुदाई से डर रहा हूँ, असली फितना वो है।
अगर मैं जानता जाबरी ऐसा है तो कभी उसके नाम की पेशकश न करता। उसने अपने आप को एकेडमिक काउंसिल के सामने अच्छा दिखाया था। मैंने भी अक्सरियत की राय को तरजीह दी थी, लेकिन ये खुदाई क्या कह रहा है, उसे किस लिए अपना माविन बनाया है?
मैंने भी उससे कहा, लेकिन तुम नहीं जानते जाबरी के सामने कितना शरीफ बनता है।
खुदाई का बैकग्राउंड कहीं से ठीक नहीं है, मैंने कभी भी उस पर भरोसा नहीं किया है।
अच्छा अब यहाँ आ जाओ।
ऐसा कह रहे हो, आओ जैसे मैं करीब के किसी शहर में हूँ। कैसे आऊँ, असली सेमिनार अभी बाकी है।
मिनिस्टर के मुआविन और खुद मिनिस्टर साहब तुम्हारे सिलसिले में अलग सोच रखते हैं। मोबाइल उठाओ और उनसे बात करो और कहो ये जो खुदाई है इसको यूनिवर्सिटी से बाहर निकालें। उसने इतना मुझे परेशान किया कि मुझे स्टूडेंट्स की सरपरस्ती से इस्तीफा देना पड़ा। उनके साथ काम करना महाल है।
अगर हो सकेगा मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन पहले कर्नल साहब की रिपोर्ट जरा आने दो।
देर हो जाएगी नासिर।
थोड़ा सब्र से काम लो मसूद, सब्र से। अगर खुदाई और जाबरीन ने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए तो मैं वादा करता हूँ कि उठकर ईरान आ जाऊंगा, ठीक है ना?
मैं जानता हूँ तुम अभी भी वही पुराने नासिर हो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हम मिल गए।
अच्छा तो ठीक है, अगर यकीन है कि उसी कंपनी में काम करता है तो वो काम जो बताया था उसे करो
और जल्दी आओ, ग्राफिक का एक स्टूडेंट आया है, तुम यहाँ रहो।
ठीक है, आधे घंटे में पहुँचती हूँ।
हाँ, इस लड़के शाहिन को भी फोन करो और कहीं उसे मिलने को कहो, और कंपनी ना हो तो बेहतर है।
देखो अच्छी तरह से बात करना।
डियर नाज़नीन, प्लीज मुझे इस लड़की की जरूरत है, इसे टॉप किया है। हाँ
हमीदे मुरादी।
एग्जैक्टली, टाइम नहीं है, जल्दी करो।
ठीक है, मैं समझ गई।
का मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है. The mobile set is off.
हेलो जी डॉक्टर साहब, अभी पहुंचती हूँ. मुझसे कोई काम था डॉक्टर.
ठीक हो?
शुक्रिया, ठीक ही हूँ सर.
बैठो. तुम्हारे माली हालात कैसे हैं?
माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं सकी.
मैं अपने सवाल को दोबारा पूछूं? मैंने पूछा आपके माली हालात ठीक ठाक हैं?
बस ठीक है.
वो घर जिसमें रहती हो, वो तुम्हारा है या तुम्हारे वालिद का?
ये सब किस लिए पूछ रहे हैं?
बता देंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब दो.
ना मेरा घर है ना मेरे बाप का घर.
किराए का है?
मेरे वालिद चौकीदार हैं. मैंने कोई हंसने वाली बात की?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा सही था.
मेरे वालिद की जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरे पैसों की उनको जरूरत नहीं है. अगर हो सके तो कहिए मुझसे क्या काम है.
तुम चाहती हो कि इतनी मालदार हो जाओ कि अपने लिए खूबसूरत फ्लैट ले लो और एक गाड़ी भी तुम्हारे पास हो?
अगर आप इसका रास्ता जानते हैं तो फिर खुद क्यों नहीं अपनाते?
इसलिए कि अकेला हूँ.
माफ कीजिएगा, मुझे काम है, अब इजाजत दीजिए.
एक मिनट फरा मर्जी साहिबा, जरा एक मिनट. क्या आप मुझसे डरती हैं? मैं आपकी भलाई चाहता हूँ. क्या अभी तक मुझ में बुराई देखी है?
नहीं, लेकिन मैं नहीं जानती क्यों आपने ये पेशकश मुझको दी.
चूंकि आप इसकी अहल हैं. जाइए सोचिए, अगर चाहती हैं तो आ जाइएगा, साथ में बैठकर बात करेंगे. अगर बच्चा कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ एक दोस्त की तरफ से एक पेशकश.
मुझे क्या करना होगा?
मौके पर बताऊंगा, मुझसे मालूम करती रहिएगा.
सलाम अलैकुम डॉक्टर, मैं मालूम करती रहूंगी.
कहाँ रह गए थे डॉक्टर?
एक मीटिंग थी, एक मुश्किल है, तुमसे मशवरा लेना है सुलेमानी के सिलसिले में. गैर मामूली सलाहियत के अफराद की कमेटी उसे तकरीर के लिए बुलाया है. हो सकता है मिनिस्ट्री की तरफ से उसे कोई अच्छी पोस्ट भी मिल जाए.
वो खुद भी कुछ जानता है?
अभी नहीं.
तो हम भी अभी कुछ उससे नहीं कहेंगे.
अगर फोन पर उसे पता चल गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी. जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.
ठीक है, तो तकरीर में क्या कहिएगा? अगर ज्यादा बकवास की तो उसे नौकरी से निकाल देंगे?
खानदानी लड़ाई तो नहीं है उससे, मसूद हमारा दोस्त है. बस वो बाज़ औकात बाज़ मसलों को सतही तौर पर देखता है और हमारा उससे फिक्री इख्तलाफ है बस. अच्छा, ऐसा करते हैं, उसे यहीं बुलाते हैं और उससे बात करते हैं, देखें वो चाहता क्या है.
ये क्या कह रहे हैं? इसका मतलब हम दोनों की मौत है. मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ. मसूद तो ना मामला करेगा और ना ही दोस्ती, बस इसको शिकस्त देनी है. देखो डॉक्टर, हमने ना तो कोई गैर कानूनी काम किया है और ना ही माली तौर पर कमजोर हैं. और हाँ, यूनिवर्सिटी का इल्मी मेयार तुम्हारे दौर में बढ़ा है.
ठीक है, लेकिन इस बात पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, चूंकि अक्सर प्रोफेसर्स का इंतखाब डॉक्टर शरीफी के दौर में हुआ है.
लेकिन काम किसने किया? जिसने तमाम किया. तुमको याद होना चाहिए कि ये सब काम तुम्हारे जमाने में अंजाम पाए हैं. शरीफी का इसमें क्या दखल? सुलेमानी को मेरे ऊपर छोड़ दो.
मतलब मैं उसे वहां जाने दूं और जो दिल चाहे वहां तकरीर करे वो?
हाँ जाने दो, हम भी देखें क्या करता है.
और मैंने मिनिस्ट्री में उसके बारे में एक और बात सुनी है.
क्या सुना है?
उसे डायरेक्टर जनरल बनाने की पेशकश की गई है और शायद उसे उस कमेटी की सरपरस्ती दे दी जाए।
यह मुमकिन ही नहीं है कि मैं ऐसा होने दूं। उसका इस्तीफा कबूल नहीं करना चाहिए था।
तुम्ही ने तो कहा था।
हाँ, लेकिन गलती हो गई। अगर तहरीरी तौर पर उस तक न पहुंचा हो तो उसे काम पर बुलाओ।
नहीं मानेगा, जरूर कोई शर्त लगाएगा।
किस तरह की शर्त?
जैसे तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटाने की।
हेलो, कहाँ हैं आप? हाँ, इसी गली में सीधे आओ, मैं तीसरी गली पे खड़ा हुआ हूँ।
अब मैं चाहती हूँ कि अच्छे काम की पेशकश तुम्हें दूँ। तुम्हारे फायदे में है अगर हमारा साथ दो।
नीना मैडम ने मेरे जाने और पासपोर्ट लेने के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा?
क्यों नहीं, इत्तेफाक से खुद ही तुम्हारा काम फॉलो कर रही हूँ और कुछ लोगों से बात भी की है। जानते हो फरशीदी, तुम्हारे काम की उजरत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन परेशान ना हो इस शर्त के साथ कि जो भी तुमसे कहूंगी गौर से सुनोगे।
आपकी बात सुन रहा हूँ।
अगर चाहते हो कि तुम्हारे सफर की मुश्किलें आसान हो जाएं तो अपने दोस्तों से करीब रहो। सीधी बात यह है कि तुमको चाहिए उनको राजी करो ताकि मेरे ऑफिस आए।
मैं ही तो फरीद को लाया हूँ।
हाँ शाबाश, इसी वजह से नीना मैडम तुमसे खुश हैं और मुझे कह रही थी कि तुम्हारे लिए काम करूं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन नहीं आई।
यूनिवर्सिटी पोजीशन?
हाँ, हमें तुम्हारे लिए एक पासपोर्ट और एक अच्छी पोजीशन बनानी होगी और इसके लिए तुम्हारी नेशनैलिटी भी बदलनी पड़ेगी, इसलिए कि अमरीकी सफारतखाने से तुम्हें वीजा मिल सके।
हाँ, ये तो मुझे भी पता है।
तुम्हारा काम भी ज्यादा है और जो काम भी हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो बड़ा ही अच्छा है और गारंटी के साथ है।
हाँ, ठीक कहती हैं।
तो फिर अब मेरी गौर से बातें सुनो। ये लो।
मैं सिगरेट नहीं पीता।
सिगरेट क्या है, च्युइंगम है। बुदापेस्ट से लाई थी, कुछ स्टूडेंट्स को ले गई थी मैं। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ले गई थी। ऐसे च्युइंगम यहाँ थोड़ी मिलते हैं।
आपका काम भी बहुत दिलचस्प है, सिर्फ सफर ही सफर।
हाँ, मुझे अपने काम से मोहब्बत है, इसी बहाने सफर भी करते हैं और खिदमत भी। लेकिन वो काम जो तुम्हें करना है मिस्टर शाहीन, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि लोगों को यहाँ लाना अहम नहीं है, उनको राजी रखना अहम है। तुम्हारा काम यह है कि अपने दोस्तों को बाहर जाने का शौक दिलाओ, खास तौर से वो जो पढ़ने में अच्छे और ज़हीन हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, आसान है, सिर्फ उन्हें इत्मीनान दिलाने की कोशिश करो।
लेकिन कैसे?
जैसे कहो कि तुम्हारा काम हो गया है और अमेरिका बर्कले यूनिवर्सिटी जा रहे हो, एडमिशन का लेटर है, परेशान ना हो, हम वो तुम्हें दे देंगे। तुम ये कहो कि यूनिवर्सिटी ने तुम्हें स्कॉलरशिप दी है और हर महीने $500 तुम्हें मिलेंगे। इन तमाम चीज़ों को कानूनी तौर पर हम तुम्हें देंगे कि तुम उन्हें दिखा सको, लेकिन मिस्टर शाहीन जल्दी करना और एहतियात करना कि कोई तुम पर शक ना करे। अपने आप को खुश जाहिर करो, ऐसा जाहिर करो कि वो तुमसे पूछें खुद इस बात का सबब और शक ना करें। पहले तो तुम ज़रा इधर उधर की बातें करो, लेकिन बाद में सारी बातें बता दो और बता सकते हो सारी अपनी बातें। मिस्टर शाहीन, देखो जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। हकीकत में तुम अपने फायदे के लिए भी काम कर रहे हो और उनके लिए भी। ये ज़हीन बच्चे, इनका दिमाग हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है, जरा सा भी अपने बुरे भले के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना?
मैं आपको बाद में बताऊंगा। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मिस्टर फरशीदी, मैं मनुचेरी बोल रहा हूँ। तुमने मुझसे एक वादा किया था लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे, और इसके अलावा तुमने अपने मोबाइल सेट को भी ऑफ कर रखा है। देखो, तुमसे मिलने का दूसरा रास्ता भी है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उम्मीद है वादा खिलाफी नहीं करोगे।
हमारे मुआशरे में स्टूडेंट का गलत मफहूम बताया जाने लगा है। उन्हें अनार्किस्ट कहते हैं। ये लफ्ज कदीमी यूनान में अरनाशिया से मशहूर था। इसका मतलब होता है बगैर हुकूमत। लेकिन एक जदीद अनार्किस्ट इस बात को नहीं मानता। किसका यह एतकाद है कि एक मुआशरे को या एक मुल्क को बगैर हुकूमत के चलाया जा सकता है? और ये काम जो तुम लोग कर रहे हो, इसका मतलब यानी हर्ज व मर्ज, क्लास की छुट्टी करते हो, मैं इस बात का मुखालिफ हूं। तुम में से कोई बताए कि इसका फायदा, इसका क्या फायदा? ये जो आप क्लास का बायकॉट करते हैं, इसका फायदा क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा कोई मुतालबा ना हो। मुतालबा तलबा का हक है, और वो तलबा जो अपने हक का मुतालबा ना कर सके और मुआशरे में पेश आने वाले हादसों के सामने खामोश बैठे रहे, वो फाल नहीं कहलाएंगे। इस पर सोचें। अगर एक तालिबे इल्म ये समझ ना पाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो हकीकत में वो तलबा नहीं है, अपने जमाने का इंसान नहीं है। तालिबे इल्म को चाहिए कि थोड़ी सियासी सोच रखे, सियासी जहनीयत रखे, सियासी तजिया कर सके। सही मुतालबे सही सियासी बसीरत और सही सियासी तजिया और तहलील के जरिए ही जाहिर होते हैं। मैं चाहता हूं कि अब इसके बाद किसी क्लास की छुट्टी ना की जाए।
माफ कीजिएगा सर, इस तरह मेरे उन दोस्तों को जिनको निकाल दिया गया है, उनका क्या होगा?
इस तरह से तो तुम लोग अपने आप को पढ़ाई से महरूम कर रहे हो। मैं डॉक्टर जाबरी के किए काम पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपने मौजू में और काम में बिल्कुल महारत रखते हैं। उनकी क्लास की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तुम लोग अपना नुकसान करोगे। डॉक्टर जाबरी शायद अच्छे प्रिंसिपल ना हो, लेकिन कौन ये कह सकता है कि वो अच्छे उस्ताद नहीं है? इंसाफ से काम लो। कहते हैं कि एक जगह यजीद की शराबखारी और बेरारवी का तस्करा हो रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उस जगह मौजूद थे, तो उन्होंने फरमाया, लेकिन सुना है वो शेर बहुत अच्छे कहता है। देखो मारिफत क्या करती है। खुदा की कसम, इन बातों का इदराक दूसरे कामों से बरतरी रखता है। क्लास का वक्त खत्म हो गया, आज सिर्फ मैं बोलता रहा, कुछ पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब तुम लोग भी कुछ बोलो। मेरी बातों के सिलसिले में कोई कुछ कहे, कोई हर्फ, कोई लफ्ज, रेडियो की तरह मैं ही बोले जा रहा हूं।
सच बात का कौन इनकार कर सकता है सर?
नहीं, मैं चाहता हूं बहस करो, गलत हूं तो मुझे बताओ। मैं इस वक्त चाहता हूँ कि एतराफ़ करूँ कि मुझे तुम लोगों की सरपरस्ती से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। गलती का एहसास खुद एक तरक्की है, चूंकि वो इंसान की तरक्की का बायस बनता है।
सर, मैंने गलती की है। मैं तमाम दोस्तों से माफी मांगना चाहता हूँ।
आप क्लास का वक्त खत्म हो चुका है मोहम्मद अली, चलो
सर,
आप किसी और वक्त।
प्लीज, मैंने कुछ दिन पहले किसी के जरिए यूनिवर्सिटी के मसाइल को अखबारात तक पहुंचाया था, जिसकी वजह से हमारे दोस्तों का बहुत नुकसान हुआ है। मैं उन सब से माफी मांगना चाहता हूँ।
मोहम्मद अली, वो तुम्हारी हरकत थी?
तुम हमसे क्या चाहते हो? अभी बताता हूँ तुझे। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अभी बताता हूँ उसको। दिमाग खराब हो गया इसका।